हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। क्यों गए थे आप उस आदमी के पास? क्यों हमारे बच्चे की जिंदगी की भीख मांगी उससे? क्यों उसके आगे झुके? नहीं जाना था आपको उसके पास, कभी नहीं जाना था। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, ना कि जब मुझे ये बात पता चलेगी तो कैसा लगेगा मुझे। आपने वहाँ सबके सामने कह दिया कि ये बच्चा आपका नहीं। एक पल को आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि आपके वो शब्द कितने चुभे होंगे मुझे। मैंने तो अपना लिया था इस रिश्ते को, आपको अपना पति और अपने बच्चे का पिता मान लिया था, पर आज एक झटके में आपने हम दोनों को गैर बना दिया, उस रिश्ते पर सवाल उठा दिया जिसकी डोर से हम तीनों बंधे हैं। आपने ये तक नहीं सोचा कि जब आपके परिवार वाले सवाल करेंगे कि आपका बच्चा नहीं तो आपकी पत्नी ने और किसके बच्चे को जन्म दिया है, तो क्या जवाब देंगे? जैसे आज ये कह दिया कि बेबी आपका बच्चा नहीं, वैसे ही ये भी कह देंगे ना कि मैं आपसे पहले किसी और की पत्नी रह चुकी हूँ। बता देंगे उन्हें भी मेरा अतीत, कैसे प्रेम मुझे अपनी एक रात की पत्नी बनाकर मेरे शरीर को हासिल करके अगले ही दिन छोड़कर भाग गया मुझे, और मैं पागल उस धोखे के रिश्ते की निशानी को दुनिया में लाने के लिए सबके खिलाफ चली गई। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जाइए, बता दीजिए सबको सब, बता दीजिए कि मुझ पर तरस खाकर आपने एक छोड़ी हुई लड़की को अपनी पत्नी बना लिया और उसके पहले पति के बेटे को अपना बच्चा कहते हैं। जाइए, बता दीजिए सबको हमारे रिश्ते की हकीकत, कि आज भी आपके लिए मैं आपकी पत्नी नहीं और वो बच्चा आपका बच्चा नहीं। जाइए, बता दीजिए सबको मेरी हकीकत, मेरे जिस अतीत को आपने सबसे छुपा कर रखा है, सारी दुनिया को उसके बारे में बता दीजिए। कर दीजिए मुझे बदनाम, बना दीजिए मेरे और हमारे रिश्ते का तमाशा। प्रीति उसके सीने से लगी रोते हुए सब बोल रही थी, उसकी रूंधी हुई धीमी आवाज़ ही बाहर आ रही थी, पर आयुष्मान सब सुन और समझ पा रहा था। प्रीति काफ़ी देर तक यूं ही उसके सीने से लगी रोते हुए बोलती रही, फिर धीरे धीरे जब वो शांत हो गई तो आयुष्मान ने उसको खुद से अलग किया। प्रीति का गोरा मुखड़ा इतना रोने की वजह से लाल हो गया था, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आंखें और नाक भी लाल हो चुकी थीं, पसीने और आंसुओं से बाल चेहरे पर चिपक गए थे, लब हल्के से खुले थे और वो अब भी सिसक रही थी। आयुष्मान ने एक बार फिर उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बड़े ही प्यार से बोला, जानता हूँ कि बहुत हर्ट किया है मैंने तुम्हें, पर दोनों ही बार मैंने बस हमारे बच्चे के बारे में सोचा था। दोनों ही परिस्थिति में मुझे बस कैसे भी करके हमारे बच्चे की जान बचानी थी, और इसके लिए मुझे तब जो भी समझ आया मैंने किया। जब बेबी का जन्म हुआ और डॉक्टर ने कहा कि उसमें खून की कमी है और वक्त पर खून ना मिलने से उसकी जान जा सकती है, तो उस वक्त एक प्रेम का ही ख्याल आया मुझे, जो अपना खून देकर हमारे बच्चे की जान बचा सकता था, इसलिए मैं उसके पास पहुंच गया। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसके आगे झुका मैं, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं, पर दुख हुआ था जब उसने अपने ही बच्चे को खून देने से मना कर दिया। जब सोचता हूँ ना कि अगर वक्त पर प्रेम आकर बेबी को खून नहीं देते तो क्या होता, तो उसकी कल्पना से मेरी रूह कांप जाती है। तुमने 7 महीने तपस्या की और मैं बस किसी भी कीमत पर उस तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था, इसलिए गया था प्रेम के पास, और जानता था कि तुम्हें ये जानकर तकलीफ होगी, इसलिए तुम्हें नहीं बताया था। और आज जो मैंने वहाँ कहा, तब भी परिस्थिति ऐसी थी, गुरमीत बेबी को मेरा बच्चा समझकर मारना चाहता था, तो बस उसकी जान बचाने और उसका ध्यान भटकाने के लिए मैंने वो सब कहा था, ताकि कैसे भी करके बस हमारा बेबी सेफ रहे। मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, मैंने तुम्हें और बेबी को पहले दिन से दिल से अपनाया है, और मेरे वाहिगुरु जानते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हारे बच्चे को हमारा बच्चा समझा है, खुद को पहले दिन से उसके पिता के रूप में देखा है। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारा अतीत हमारे आज पर अपनी परछाई भी डाले, कभी नहीं चाहा कि तुम्हारे और प्रेम के रिश्ते की सच्चाई किसी के सामने आए या कोई तुम पर उंगली भी उठाए, कभी नहीं चाहा कि हमारे बच्चे की पैदाइश पर सवाल उठे, और मैं अतीत में दफन राजों को कभी बाहर नहीं आने दूंगा। सबके सामने वो बात करने की गलती मुझसे हुई है, तो मैं ही सुधारूंगा उसे। कल भी दुनिया को और मेरी फैमिली को यही पता था कि तुम मेरी पत्नी हो और वो हमारा बच्चा है, और आगे भी सबके लिए तुम मेरी पत्नी और बेबी हमारा बच्चा रहेगा। मैं कभी तुम्हारे बीते कल को हमारे आज को खराब नहीं करने दूंगा। वो बातें कभी किसी के सामने नहीं आएंगी। मैं सब संभाल लूंगा और वादा करता हूँ कि दोबारा कभी चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, भूल कर भी इस बात को अपनी जुबान पर नहीं आने दूंगा। अब तो अपनी नाराजगी और गुस्सा खत्म कर दो। प्रीति ने शांति से उसकी पूरी बात सुनी, फिर नम आंखों से उसको देखते हुए सुबकते हुए बोली, याद रखिएगा, अगर दोबारा आपने कभी मजाक में भी कहा कि बेबी आपका बच्चा नहीं है, तो मैं और बेबी आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे और कभी लौटकर भी नहीं आएंगे। हमेशा याद रखूंगा, अब तो नाराज नहीं मुझसे। आयुष्मान ने बड़े ही प्यार से उससे सवाल किया। प्रीति ने सुबकते हुए इनकार में सर हिला दिया और उसके सीने से लग गई। आयुष्मान ने भी उसको अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। कुछ पल बाद प्रीति ने सर उठाकर उसको देखते हुए कहा, कब तक हमारे बच्चे को बेबी कहकर बुलाएंगे? अब हमारे बच्चे का एक अच्छा सा नाम रख दीजिए। नाम? अब तो बेबी के जन्म को इतने दिन हो गए, क्या अब तक आपने कोई नाम नहीं सोचा? सोचा तो है, पर ऐसे नहीं बताऊंगा। पहले हमारे बच्चे के नामकरण की पूजा होगी, उसके बाद बताऊंगा। तो पूजा कब होगी? मामी से पूछता हूँ, कोई अच्छा सा दिन निकलवा लेंगी। पर तब तक क्या बेबी ही कहेंगे उसे? नहीं, जो तुम्हारा मन करे प्यार से बुला लेना। आयुष्मान की बात सुनकर प्रीति ने एक पल को सोचा, फिर आयुष्मान को देखकर बोली, अच्छा और आप क्या बुलाएंगे? बेटू। आयुष्मान ने जैसे ही ये कहा, प्रीति ने झट से सर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही बुलाऊंगी। उसके इस अदा पर आयुष्मान मुस्कुरा उठा और प्यार से उसके गाल को छूकर बोला, अच्छी बात है, तुम भी यही बुलाना। चलो अब तुम जाओ, मैं खाना बना लूँ। उसकी बात पर प्रीति ने तुरंत ही इनकार करते हुए कहा, नहीं, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना बना लूँगी। अभी तुम किचन कम से कम 13 दिन तक किचन का काम नहीं कर सकती। दादी बता रही थी कि 13 दिन या 21 दिन बाद तुम्हें हलवा बनाना होगा और उसके बाद तुम वापस किचन का काम कर सकोगी। और मैं सोच रहा था कि कुछ वक्त के लिए मामी को यहाँ बुला लूँ, बेबी और तुम्हारा दोनों का ध्यान अच्छे से रख लेंगी। आयुष्मान की बात सुनकर प्रीति का मुंह छोटा सा हो गया। उसने मुंह लटकाते हुए हामी भर दी, बुला लीजिए। आयुष्मान ने प्रीति को रूम में भेज दिया और खुद खाना बनाने लगा।